नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन।
श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। और आज डेटलाइन में हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा की, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपने मंदिर वापस जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि इस समय लगभग 4 बजे ये यात्रा शुरू हो चुकी है। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर वी विल ऑफ कोर्स कवर द बाहुड़ा यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है। एज जागृति रैक्टली पॉइंटेड आउट, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज शो विद द हेडलाइंस। India signs MOU with Marshall Islands to implement 4 community development projects.
श्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए बधाई दी।
होम मिनिस्टर अमित शाह स्पीक्स टू चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश ओवर फ्लड सिचुएशन इन द स्टेट्स।
मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की।
And in football, Argentina lifts Copa America championship record 16th time, defeating Colombia 1-0 in Miami, US. And now it's time for Dateline India, and as Jagriti has already told you that today we are going to talk about the Bahula Yatra, which has just started, and it's a very, very important event, not just in the Odia calendar but also in our calendar, in Indian calendar.
बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध है ये बाहुड़ा यात्रा जो आज ओडिशा के पुरी में आयोजित की जा रही है। 4 बजे ये यात्रा शुरू हुई है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के साथ अपने मंदिर यहां इस महोत्सव जो ये है इसमें वापस जाते हैं और सुबह से ही लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पुरी में एकत्र हो रहे हैं। बाहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर वापस जाते हैं।
यस, एब्सोल्युटली, द रथ यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड एट पुरी एवरी ईयर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ आषाढ़, when the 3 deities are taken out of the temple on beautiful chariots, and then they are then taken to Gundicha temple, which is said to be their maternal aunt's home. They stay there for 9 days, and on the 10th day, that is today, they come back to their original temple, the Shri Mandir.
जी हाँ, और इन तीनों रथों को खींचने से पहले सुबह से ही सभी संस्कार संपन्न किए जा रहे हैं। बहुत सारे संस्कार इसमें किए जाते हैं। इस दौरान पुरी के राजा गणपति दिव्या सिंह देव सुनहरी झाड़ू से तीनों रथों के आगे सफाई की उन्होंने, और ये यात्रा इसके बाद में शुरू हुई।
यस जागृति, एंड बाहुड़ा यात्रा को दक्षिणाभिमुखी यात्रा भी बोलते हैं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द चैरियट सिट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ साउथ, एंड द यात्रा marks the end of the 9-day sojourn of Lord Jagannath and his siblings, Goddess Subhadra and Balbhadra. The deities return to Shri Mandir from Shri Gundicha temple in 3 different chariots that are pulled by the devotees. Lord Jagannath, Balbhadra and Subhadra spend some time in Gundicha temple and start their journey back to the Shri Mandir. On returning day, the 3 deities are offered pola pitta, and pola pitta wahan ki khas mithai hoti hai Jagriti. It's made of rice, coconut, lentils and jaggery, and after that they start their journey. On nearing the Shri Mandir, the rath or the chariot of Balbhadra and Subhadra move forward and are parked at Singh Dwar, but Lord Jagannath's rath halts in front of Gajpati King's palace. On the other hand, Ma Lakshmi, who is wife of Lord Jagannath, steals a glimpse at Chahani Mandapa for the safe journey of the 3 deities from Gundicha temple. Lord Jagannath offers a loving garland to Goddess Lakshmi as a souvenir of his love.
और इस यात्रा की खासियत जो सायरा होती है वो ये होती है कि इसमें रथों को कोई घोड़े या किसी अन्य तरह के उससे नहीं खींचा जाता है, बल्कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने भगवान के रथों को अपने हाथों से खींचते हैं जब ये यात्रा शुरू होती है तब भी, और जब ये वापस अपने मंदिरों की ओर जाते हैं तब भी। तो इससे मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये भी है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की डोर हम सब ने थाम रखी है, वैसे ही ईश्वर कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से आपने मुझे थाम रखा है।
एब्सोल्युटली, और वो थामना बहुत जरूरी भी है, बिकॉज आई थिंक होप इज एवरीथिंग दैट वी होप यू नो होल्ड ऑन टू।
जी, और ऐसा माना जाता है कि रानी गुंडीचा ने राजा से इस उत्सव का आयोजन करने का अनुरोध किया था ताकि जिन लोगों को पहले आमतौर पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी वे इन रथों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके और इस तरह से मोक्ष को प्राप्त करें। गुंडीचा यात्रा का नाम रानी गुंडीचा के नाम पर ही रखा गया है।
यस, एंड यू नो जागृति, दिस इज अ वेरी वेरी एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा, वी कैन से इट डेट्स बैक टू मेनी मेनी इयर्स, और इसको जो है कह सकते हैं कि दिस फेस्टिवल इज एज ओल्ड एज द रथ यात्रा एंड इट सेल्फ एंड इट मिरर्स एम्पल रिचेस ऑफ द ओडिया कल्चर। दिस जर्नी ऑल्सो एम्स एट डिपिक्टिंग द साइकल्स ऑफ लाइफ, एम्फसाइजिंग री यूनियन एंड रिटर्न, एंड वेल वी हैव गॉट अ वेरी वेरी लाइव यू कैन से वहां का एक ग्लिम्स जो है इफ थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो हम लोग सुना सकते हैं, विच विल ऑब्वियसली क्रिएट अ विजुअल इन योर माइंड।
ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଠି ପତାକା ଦେଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ସମ୍ମୋହନ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯେ ଭାଣ୍ଡ କରିଦେଲ ବିଷ୍ଣୁ କୁଟ ମାୟା ଲଗାଇ ଦେଇ ଭିଡ଼ିକି ଯେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କାରିଙ୍କି ଯେ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଜଣାଣରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶଙ୍କର ଯିଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଶିବଙ୍କର ରୂପ ବା ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବନା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ସାଇରା ଇସ୍କେ ପିଛେ ଏକ ବହୁତ ହି ଏକ ଜିସେ କହତେ ହୈ ପୌରାଣିକ କଥା ହୈ। ଜବ ୟେ କଥା ଶୁରୁ ହୋତି ହୈ ଔର ଜବ ଜହାଁ ସେ ରଥ ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ହୋତି ହୈ ତିନୋ ଭଗବାନ ଜବ ଆତେ ହୈ ଅପନି ମୌସୀ के घर में, गुंडीचा रानी जो है वो इनकी मौसी हैं और मौसी के घर पे 8 दिन के लिए आते हैं, और यहाँ पर जब वो होते हैं तो यहाँ पर आती हैं माँ लक्ष्मी, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाती हैं। तो जिस तरह से ये कहा जाता है ना कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें हल्की सी तकरार और मनाना, ये यहाँ पर भी होता है। रानी जो लक्ष्मी माँ है वो लौट कर चली जाती है, और इसके बाद में जब भगवान जगन्नाथ लौटते हैं तो वो उनसे बात नहीं करती हैं, गुस्से में होती हैं, उसके बाद में फिर भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं, और इस तरह की तमाम जो ये परंपराएं हैं अनुष्ठान हैं पूरे होते हैं।
यस, एंड आपने जैसे कहा उनको मनाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो गालंट देते हैं वो हार देते हैं शायद उनको मनाने के लिए देते हैं। सो नॉट जस्ट ह्यूमंस, इवन गॉड्स इंप्रेस देयर वाइव्स थ्रू फ्लावर्स, इजंट इट?
बिल्कुल।
एंड फॉर डेविटीज द बावड़ा यात्रा इज नॉट एन ऑर्डिनरी जर्नी, रादर इट्स अ ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट रीज्यूविनेट्स देयर बॉन्ड विद डिविनिटी। द एक्ट ऑफ pulling the chariot has been interpreted as a service to the deities whereby the participants get closer to their gods।
Or ऐसे तो ओडिशा और उसमें भी विशेषकर पुरी जो है पर्यटन के लिए इतना मशहूर है, लेकिन इन दिनों में जब रथ यात्रा होती है तो वहां का जो माहौल है उसे वहां के हर पल को हर क्षण को जीने के लिए लोग विदेशों से वहां पर आते हैं और रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं, और इससे पर्यटन को भी काफी अच्छा एक बूस्ट मिलता है।
एब्सोल्युटली, सो वी रियली होप दैट दोज ऑफ यू हु प्रॉब्ली कुडंट जॉइन द यात्रा दिस ईयर वुड लुक फॉरवर्ड टू नो जॉइनिंग द यात्रा इन द कमिंग ईयर्स।
और अब चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। और गर्मियों के मौसम में एक फल जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है, मुझे लगता है वो सबको ही पसंद आता है।
यस एब्सोल्युटली, जब गर्मी का लोग बेसब्री से इंतजार इंडिया में इसीलिए करते हैं क्योंकि आम खाने को मिलते हैं।
तमाम तरह की किस्मों के आम जब आते हैं और प्लेट में सजाकर जब वो खाए जाते हैं तो इसका एक अलग आनंद होता है।
वैसे अलग आनंद तो प्लेट में सजा के नहीं मिलता है, जो आम को आम की तरह खाया जाए, बाग में बैठ के हाथ से नोच के, जब सारा रस जब सारा रस गिर रहा हो, जब आपके चेहरे से लगे कि आपने आम खाया है, उसी में मजा है, isn't it? And well, the 31st edition of Mango Mela was held at Yadavendra Gardens in Pinjore from the 12th to 14th of July. The annual event is organized by the Haryana government, which provides an opportunity to the people to enjoy different varieties of mango. So I think that's a very interesting story, Jagrati. Let's hear more from Akansha.
Over 300 varieties of mangoes were showcased at the fair this time. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini inaugurated the Mango Mela and visited every mango stall at the fair, gathering detailed information about them. Haryana Tourism Minister Kavarpal said that this fair attracts farmers from Haryana, UP, Punjab, Himachal and several other states, fostering knowledge exchange and providing farmers with new insights. People enjoyed the cultural programs and various competitions for children were organized. The craft bazaar was another highlight of the fair, attracting a lot of shoppers, artisans and weavers from Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan and other states showcased their handloom and handicraft products. In this Mango Mela, not only 300 different varieties of mangoes were exhibited, but also mango products were showcased. The major commercial varieties of mangoes competing at the fair included the Sherry, Chausa, Langda, Amarpali, Bombay Green Malda, Ratol, Malika, Ambika, Ramkela and others. Mango producers from all over the country participated in the fair, exhibiting various mango varieties. Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
और गर्मियों के सीजन के बाद बारिश का मौसम शुरू होता है और सावन कहते हैं ना कि जब सावन की ऐसी झड़ी लगी है और सावन में ही भगवान शिव के जो भक्त हैं बेसब्री से पूरे साल इंतजार करते हैं सावन के सोमवार का, और इस बार पहला जो सोमवार है वो 22 जुलाई को पड़ रहा है। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और इन भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासन की ओर से। मंदिर में दिव्यांगजनों को दर्शन कराने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी की रिपोर्ट में।
काशी विश्वनाथ धाम में 1 जनवरी से 31 मई 2024 तक 2,86,57,473 भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इस अवधि में पिछले साल के मुकाबले इस साल 93,24,682 श्रद्धालु अधिक पहुंचे। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं, ऐसे में भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए मंदिर प्रशासन तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा काशीवासियों को एक अलग गेट मंदिर में प्रवेश की सुविधा भी दी जाएगी।
काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार का प्रस्ताव जो मार्च में बोर्ड ने निर्णय लिया था कि अलग प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डेडिकेटेड होकर लोग अपना एक दर्शन कर सकते हैं और उनको बहुत लंबे समय लाइन में लगना पड़े, इसके लिए व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई है। काशी का कोई पहचान पत्र दिखाकर, आधार कार्ड अथवा आईपी कार्ड इत्यादि दिखाते हुए इसमें काशी का पता लगे को व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उनको श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा।
काशी विश्वनाथ धाम में पूरे देश से भक्त पहुंचते हैं, ऐसे में बहुभाषी कर्मचारी भक्तों की मदद के लिए व्यवस्था में लगाए जाएंगे, साथ ही धाम में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए चिकित्सक मौजूद रहेंगे। मौसम की मार से भक्तों को बचाने के लिए भी मंदिर प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा के लिए वाराणसी से मनीष सिंह के साथ ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
And now we go up north in our journey of Parikrama. The Ladakh administration has initiated steps to declare Kargyam village in the Changtang Plateau as the Yak village. A detailed project report of the same has been prepared and sent to the Ministry of Home Affairs for approval under the Vibrant Village Program. Let's hear more from Muzaffar Wani.
Situated at an altitude of 13,800 feet, Kargyam village in Ladakh is famous for its wetlands and nomadic lifestyle. People from various villages in Changthang primarily domesticate yaks for their milk and fiber. Yaks are very well adapted to high altitudes and they have large lungs and hearts as compared to other animals. During the winter, the yak stays alive in temperatures as low as minus 40 degrees Celsius. The people on the plateau are nomadic pastoralists known as Changpa. Trade has played an important role in their lives as they are not able to produce all the goods they consume. Salt, meat, animals and wool are traded for basics such as grains, cookingware, metal implements as well as more modern goods. Some parts of the Changthang Plateau are now protected nature reserves that have been established in order to increase the numbers of endangered species. Declaring Kargyam a yak village and granting permission for drone shepherding will be beneficial to the people of the region in numerous ways, particularly from the fact that livestock plays an important role in their lives since a vast majority of the land they inhabit is inhospitable for farming. For Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
और अब आते हैं बिहार की ओर, जहां पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में वनों का दायरा बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। मॉनसून के दौरान अन्य हिस्सों के अलावा वनस्पति रहित जितने भी पहाड़ हैं वहां पर पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए सीड बॉल टेक्निक अपनाई जाएगी। सीड बॉल टेक्निक से किस तरह से वहां पर पौधरोपण यानी कि प्लांटेशन को बढ़ावा मिलेगा, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र की इस रिपोर्ट में।
बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा काफी कम है। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 8% हिस्सा वनों से आच्छादित है। देश की बड़ी आबादी वाले राज्य बिहार में यह स्थिति पर्यावरण संतुलन के लिए समस्या बन रही है, इसलिए राज्य सरकार ने इस वर्ष मॉनसून में पौधारोपण के साथ साथ बिना वनस्पति वाले पहाड़ों पर भी पौधारोपण का निर्णय लिया है। राज्य के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बीजों को मिट्टी और खाद में लपेटकर सीड बॉल तकनीक से पहाड़ों पर ड्रोन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिराया जाएगा।
सीड बॉल यानी मिट्टी और खाद को मिलाकर सीड हमने डाल दिया है, उसको मैनुअल तरीके से और ड्रोन के माध्यम या हेलीकॉप्टर से छिड़काव करेंगे। उसमें गया है औरंगाबाद, नवादा, जमुई, ऐसे तमाम से जिले, वहाँ सभी हमने डीएफओ को आदेश दिया है कि आप तैयारी करें, तैयारी चल रही है।
राज्य सरकार की इस योजना से उन क्षेत्रों में वनस्पति का आवरण तैयार करने में मदद मिलेगी जहां पहुंचना काफी कठिन है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
And now it's time for Azadi Ka Safar.
In today's episode, we remember freedom fighter Durgabai Deshmukh, who was born on the 15th of July, 1909, in Rajahmundry, Andhra Pradesh. A public activist for women's emancipation, she founded the Andhra Mahila Sabha in 1937. She was also the founder chairperson of the Central Social Welfare Board.
Seeds of social reform were sown early in Durgabai's mind, and she became conscious of the injustice suffered by women in all strata. Perhaps this was due to the fact that the social reformer Kandukuri Vireshalingam was a close friend of her grandfather. Durgabai met Mahatma Gandhi when she was just a 12-year-old. She had collected money for the nationalist movement along with a few volunteers, and when she came face to face with the Mahatma, she gave her gold bangles as well on his request.
This was a turning point which further kindled her spirit of selfless service and patriotism. A lawyer by profession, Durgabai fought against the system of child marriage and dowry and the harassment of widows in the name of customs, although she herself was married at the age of 8.
Durgabai was a persuasive public speaker and was imprisoned during the Salt Satyagraha. She came to understand the pitiable conditions of women criminals and wished to arrange free legal aid for them. This gave the impetus to the Free Legal Aid Center of the Andhra Mahila Sabha in Hyderabad, particularly to help unlettered women of all classes. Durgabai realized that lack of education impeded women's progress. This impelled her to lay the foundation for adult education programs, which were taken up by the government of independent India.
A member of the Constituent Assembly, Durgabai played an active role in drafting and enacting the Hindu Code Bill. Her efforts to elevate the status of women were evident in her involvement with parliamentary bills. In 1952, she was appointed a member of the Planning Commission. In 1953, she became the chairperson of the Central Social Welfare Board. In 1959, the government appointed her chairperson of the National Committee on Education. Durgabai received many accolades, including the UNESCO Peace Award, Padma Vibhushan, and the Paul G. Hoffman Award. She died on the 9th of May, 1981.
We also remember independence activist Shankar Khude, who was born on the 15th of July 1918 in District Sangli, Maharashtra. Shankar took part in the Quit India movement and was arrested on the 13th of October 1942 for his role in sabotaging the government's communications. He was sentenced to 18 months rigorous imprisonment, serving his term in the Hindalga Central Jail in District Belgaon, Karnataka. He died in police custody in December 1942 on account of severe torture. We salute the brave son of the soil.
Nationalist Sidhu Bhiva Pawar, who was born on the 15th of July 1902 in District Satara, Maharashtra. Sidhu Bhiva took part in the Quit India movement in Katav Taluk, Satara. On 9 September 1942, he joined a demonstration of more than 2,000 people under the leadership of Parshuram Gharge. Singing patriotic songs and shouting nationalist slogans, they marched on to hoist the tricolour on the court building. The marchers were stopped by police officials and, on refusal to disperse, they were fired upon. Sidhu received a serious bullet injury and succumbed in hospital on the 30th of September, 1942.
And now it's time for business news. Indian benchmark indices closed in positive territory today, led by gains in PSU banks, realty, oil and gas sectors. Nifty 50 opened at a fresh all-time high today. At close, Nifty 50 jumped 85 points to settle at 24,587, while the Sensex settled at 80,667 with a gain of 145 points. In the global crude market, oil prices rose today. Brent crude was up 0.06% to trade at $85.08 per barrel, while WTI crude was up by 0.05% to trade at $82.25 per barrel when reports last came in. At multi-commodity exchange, gold for August contract is trading at 73 rupees 290 rupees per 10 grams, while silver for September contract is trading at 92,800 rupees per kilo, when reports last came in. And Jagriti, what is the buzz from the world of sports?
जी और शुरुआत करते हैं कोपा अमेरिका चैंपियनशिप से, जहां अर्जेंटीना ने आज सुबह कोलंबिया को 1-0 से हरा कर दूसरी बार लगातार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में लॉटेरो मार्टिनेज ने अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में विजयी गोल किया। लॉटेरो मार्टिनेज ने कोपा अमेरिका गोल्डन बूट जीता। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 5 गोल किए। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16 बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में फीफा विश्व कप जीता था। और उधर स्पेन ने फुटबॉल का यूरो कप जीता है। देर रात हुए रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड पर 2-1 से जीत हासिल की। स्पेन की ओर से निको विलियम्स और मिकेल ओयारज़ाबल ने गोल किया। इंग्लैंड की ओर से एकमात्र गोल कोल पामर ने किया। और अब याद करते हैं उन हस्तियों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। और सबसे पहले मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व को उनकी पुण्यतिथि पर हम स्मरण कर रहे हैं। रंगमंच पर उन्होंने सर्वप्रथम शकुंतला का चरित्र निभाकर अभिनय की शुरुआत की। नारायण श्रीपाद राजहंस उनका नाम था, लेकिन उन्हें बाल गंधर्व के नाम से अधिक जाना गया। ये नाम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंधर्व मराठी रंगमंच पर महिला चरित्रों को निभाते थे, क्योंकि उस समय में महिलाएं रंगमंच पर किसी भी प्रकार की भूमिकाएं नहीं निभाती थीं।
धर्म
बाल गंधर्व ने गंधर्व नाट्य मंडली नाम से अपनी एक संस्था बनाई। इस संस्था ने वर्ष 1946 तक अनेक नाटक प्रस्तुत किए। संगीत नाटक अकादमी से उन्हें सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार मिला। 1964 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया।
Today we are also remembering Durga Bai Deshmukh on her birth anniversary, a freedom fighter, lawyer, social worker and politician. She was also a member of the Constituent Assembly of India and of the Planning Commission of India. A public activist for women's emancipation, she founded the Andhra Mahila Sabha or Andhra Women's Conference in 1937. She was also the founder chairperson of the Central Social Welfare Board. In 1953, she married C.D. Deshmukh, who was the first Indian governor of the Reserve Bank of India and the finance minister in India's central cabinet from 1950 to 56.
भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक बानो जहांगीर कोयाजी की आज पुण्यतिथि है। परिवार नियोजन की पक्षधर और विशेषज्ञ डॉ कोयाजी ने 1943 में स्त्री रोग तथा प्रसूति के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। इन्होंने पुणे में महाराष्ट्र की ग्रामीण स्त्रियों और उनके परिवारों के जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्हें 1993 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया और पद्म भूषण से भी उन्हें अलंकृत किया गया। गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जाखानी की आज पुण्यतिथि है। उन्हें यह सम्मान ज्यामिति और डायनेमिकल सिस्टम के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ कांग्रेस की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार को गणित की दुनिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
Today we are also remembering Badal Sarkar. He doesn't need any introduction. A very influential dramatist and theatre director, most known for his plays during the Naxal movement, especially in the 70s, and taking theatre out of the proscenium and into the public arena. When he transformed his own theatre company, Shatabdi, which was established in 1967, as a third theatre group, he wrote more than 50 plays, of which Ebong Indrajit, Basi Khabar and Sari Raat are well-known literary pieces. A pioneering figure in street theatre as well as in experimental and contemporary Bengali theatre, with his egalitarian third theatre, he prolifically wrote scripts for his Angan Manch or the courtyard stage performances and remains one of the most translated Indian playwrights. Though his early comedies were popular, it was his angst-ridden Evam Indrajit and Indrajit that became a landmark play in Indian theatre. Today, his rise as a prominent playwright in the 60s is seen as the coming of age of modern Indian playwriting in Bengali, just as Vijay Tendulkar did in Marathi, Mohan Rakesh in Hindi and Girish Karnad in Kannada. He was awarded the Padma Shri in 1972, the Sangeet Natak Academy Award in 1968 and the Sangeet Natak Academy Fellowship, which is the highest honour in performing arts by Government of India in 1997.
अरे वाह, डबल की बाजी है, याद है ना? 18 बोले हो
शशिदा,
ये रहा। अरे बस रंग खलास। अरे किस बूते पे चिड़िया रंग बोला था?
एक और एक दो तीन छः छः दो आठ दस बारह तेरह।
दो काला खोलिए शशि बाबू,
ये लीजिए।
पांच काला हो गया दादू बाबू, बस एक और खुल जाए तो इन लोगों की काली झंडी तैयार।
अरे भाई,
that was dialogues, a few dialogues from his famous play Pagla Ghoda.
जी, और उन्होंने रंगमंच को प्रेक्षागृह की परिधि से बाहर निकाला। कम से कम खर्च में नाटक मंचित करना और आमजन के लिए नाटक को निःशुल्क उपलब्ध कराना उनका लक्ष्य रहा था। और भारतीय पारसी व्यापारी जिन्हें परोपकार और दानशीलता के लिए जाना जाता है, जमशेद जी जीजा भाई की आज जयंती है। उन्होंने चीन के साथ कपास और अफीम के व्यापार में सफलता पाई। दुर्भिक्ष सहायता, कुओं और बांधों का निर्माण, सड़कों और पुलों का निर्माण, औषधालय स्थापना, शिक्षा संस्थाएं, पशुशालाओं की स्थापना और अनाथालय भी उन्होंने खुलवाए। उन्होंने जेजे अस्पताल, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, पूना बांध और जल संस्थान की आधारशिला रखी। और भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में शहीद हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की आज जयंती है। उस्मान नौशेरा के शेर के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। वे भारतीय सेना के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और साहसी सैनिकों में से एक थे जिन्होंने जम्मू में नौशेरा के समीप झांगर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज ही संस्कृत के जाने माने विद्वान, भाषाविद और लेखक कलानाथ शास्त्री का जन्मदिन है। केंद्रीय साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी से पुरस्कृत, अनेक उपाधियों से सम्मानित वे रहे और कई भाषाओं में उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं।
And now it's time to call a wrap because we hardly have 20 seconds on our hand. So please, Jagriti aur Saira ko yahin pe dijiye ijazat. We'll be here again tomorrow. Namaskar.
Namaskar.